ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथ है श्रीमद्भागवतम, आठवां स्कंद, पांचवा अध्याय। अध्याय का नाम है देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए भगवान से याचना। श्लोक संख्या 23। अयं च तस्य स्थितिपालनक्षणा सत्वं जुषाणस्य भवाय देहिनां तस्मात् व्रजामा शरणं जगद्गुरुम् स्वानां सानोधास्यतीशं सुरप्रियः। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अयम यह अवधि च भी तस्य भगवान के स्थिति पालन क्षण पालन या अपना शासन स्थापित करने का समय सत्वम सतोगुण जुषाणस्य अब बिना प्रतीक्षा किए स्वीकार करते हुए भवाया अधिक उन्नति के लिए देहिनाम भौतिक शरीर धारियों का तस्मात इसलिए व्रजामः जाना चाहिए शरणम शरण में जगद्गुरुम भगवान के चरण कमलों पर जो संसार भर के गुरु हैं। स्वानाम हमारा अपना सह वह भगवान ना हमको धास्यति देगा शम आवश्यक सौभाग्य सुरप्रियः देवताओं को स्वभावतः अत्यंत प्रिय देहधारी जीवों को के सतोगुण का आह्वान करने का यही अवसर है। सतोगुण भगवान के शासन की स्थापना करने के निमित्त होता है जो सृष्टि का अस्तित्व का पालन करेगा। अतः भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए यह उपयुक्त समय है। चूंकि वे देवताओं पर स्वभावतः अत्यंत दयालु हैं और उन्हें प्रिय हैं, अतः वे हमें निश्चय ही सौभाग्य प्रदान करेंगे। तात्पर्य, इसका तात्पर्य केवल चार पेजों का है लेकिन बहुत ही सशक्त और बहुत अच्छे अच्छे इसमें पॉइंट हैं। कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनिए, बीच बीच में आपसे पूछेंगे आपको जागृत रखने के लिए। श्री प्रभुपाद की भौतिक जगत का संचालन तीन गुणों से होता है। ये है सत्वगुण रजगुण तथा तमोगुण। रजगुण से भौतिक वस्तुओं का सृजन होता है, सत्वगुण से उनका ठीक से पालन होता है और जब सृष्टि ठीक से स्थित नहीं रहती तो तमोगुण से उसका विनाश हो जाता है। दूसरा पैराग्राफ। इस श्लोक में हम कलयुग की स्थिति समझ सकते हैं जिसमें हर इस समय हम गुजर रहे हैं। कलयुग के प्रारंभ में या यूं कहें कि द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और भगवत गीता के रूप में अपने उपदेश देकर गए जिसमें उन्होंने सभी जीवों को उनकी शरण में आने के लिए कहा है। किंतु कलयुग के प्रारंभ से ही लोग कृष्ण के चरण कमलों पर आत्मसमर्पण नहीं कर पा रहे हैं। अतएव लगभग 5000 वर्षों के बाद कृष्ण पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में सारे विश्व को यह सिखाने के लिए आए कि कृष्ण की शरण कैसे ग्रहण की जाए और किस तरह शुद्ध हुआ जाए। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण करने का अर्थ है पूर्ण शुद्धि प्राप्त करना। भगवत गीता 18:66 में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। तुम विविध प्रकार के सारे धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण ले आओ, मैं तुम्हें सारे पापों के फल से बचा लूंगा, तुम डरो मत। इस तरह जैसे ही कोई कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाता है त्यों ही वह निश्चित रूप से समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। कलयुग कलमश से ओतप्रोत है, इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम 12:3-51 में हुआ है। कलय दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परमरजित। यह कलयुग अनंत दोषों से पूर्ण है, निसंदेह देशों के सागर दोष निधि के समान है, किंतु इसमें एक ऐसा अवसर भी है कीर्तनाद एव कृष्ण से मुक्त संग परम रजित। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके मनुष्य कलयुग के कलम से छूट सकता है और अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में भगवत धाम को लौट सकता है। कलयुग का यही शुभ अवसर है। हरे बोल। जब कृष्ण प्रकट हुए तो उन्होंने आदेश दिए और जब वे भक्त रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं प्रकट हुए तो उन्होंने हमें वह मार्ग दिखलाया जिससे कलयुग के सागर को पार किया जा सकता है। वह मार्ग है हरे कृष्ण आंदोलन का मार्ग। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो उन्होंने संकीर्तन आंदोलन के युग का सूत्रपात किया। यह भी कहा जाता है कि यह युग 10,000 वर्षों तक रहेगा। इसका अर्थ होता है कि संकीर्तन आंदोलन को स्वीकार करने तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से इस कलयुग की पतित आत्माओं का उद्धार हो जाएगा। हरी बोल। कुरुक्षेत्र युद्ध जिसमें भगवत गीता का प्रवचन हुआ था के पश्चात कलयुग को 4,32,000 वर्षों तक रहना है, जिसमें से केवल 5,000 वर्ष बीते हैं। इस प्रकार अब भी 4,27,000 वर्ष शेष है। इनमें से अगले 10,000 वर्षों तक श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा 5,000 वर्ष पूर्व उद्घाटित संकीर्तन आंदोलन कलयुग की पतित आत्माओं को कृष्ण भावनामृत आंदोलन स्वीकार करने, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने एवं संसार के पार से छूटकर भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर प्राप्त होता रहेगा। कितने वर्षों तक सुअवसर है हमारे पास? नहीं, 9,500। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सदैव सक्षम रहा है, किंतु कलयुग के लिए यह विशेषतया शक्तिमान है। अतः महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए सुखदेव गोस्वामी ने हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन पर बल दिया है। कले दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परमरजित। हे राजन, यद्यपि यह कलयुग दोषों से पूर्ण है किंतु फिर भी इस युग का एक उत्तम गुण है। वह गुण यह है कि हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से ही मनुष्य भव बंधन से मुक्त होकर दिव्य लोक को जा सकता है। भागवत 12:3 पहले भी श्लोक आ चुका है 51। जिन लोगों ने पूर्णतया कृष्ण भारामित में रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का प्रसार करने का कार्य स्वीकार किया है उन्हें लोगों को भव बंधन से आसानी से उबारने के इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अतः हमारा कर्तव्य है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का अनुगमन करें और निष्ठा पूर्वक सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन कृष्ण भक्ति का प्रचार करें। मानव समाज की शांति तथा समृद्धि के लिए यह सर्वोत्तम कल्याण कार्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन कृष्ण संकीर्तन के प्रसार में निहित है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो या इतना यशस्वी क्यों है, इसकी भी व्याख्या चैतन्य महाप्रभु ने की है। चेतो दर्पण मार्जनम। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से मनुष्य का हृदय स्वच्छ होता है। सारी कठिनाई तो यह है कि इस कलयुग में सत्वगुण नहीं रह गया है और लोगों के हृदय स्वच्छ नहीं है, अतः लोग अपने शरीर को ही आत्मा मानने की भूल कर रहे हैं। यहां तक कि बड़े बड़े विचारक तथा विज्ञानी भी जिनसे हमारा संपर्क होता है इस विचार के हैं कि वे शरीर हैं। अभी उसी दिन हम एक प्रमुख विचारक टॉमस हेक्सले से विचार विमर्श कर रहे थे जिन्हें अंग्रेज होने का गर्व था। इसका अर्थ यह हुआ कि उनमें देहात्म बुद्धि थी। यह भ्रम हमें सर्वत्र मिलता है। मनुष्य में देहात्म बुद्धि के आने पर वह बिल्ली या कुत्ते जैसा पशु बन जाता है। साहेब गो खरा। इस प्रकार हमारे हृदयों में जो सबसे गंदी वस्तुएं हैं उनमें सबसे अधिक खतरनाक बात शरीर को ही आत्मा मानने की भ्रांत धारणा है। इसी भ्रांति में आकर मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूं, मैं अंग्रेज हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अमरीकी हूं, मैं हिंदी हूं, मैं मुसलमान हूं। यही भ्रांति धारणा सबसे बड़ा अवरोध है और इससे हटाना होगा। भगवत गीता का और श्री चैतन्य महाप्रभु का यही आदेश है। सबसे बड़ा खतरनाक क्या है? अपने आप को शरीर मानना। निसंदेह भगवत गीता का शुभारंभ ही इसी आदेश से होता है। देहिनोस्मिन यथा देहे कोमाराम यमुना तथा देहांतर पापी धीरस्तना मोहयति। जिस प्रकार देहधारी आत्मा इस शरीर में निरंतर बचपन से युवावस्था और फिर बुढ़ापे में चलता रहता है, उसी तरह आत्मा मृत्यु के समय दूसरे शरीर में चला जाता है। किंतु इस परिवर्तन के स्वयं सिद्ध आत्मा विचलित नहीं होता। भगवद्गीता 2:13। यद्यपि आत्मा शरीर के भीतर रहता है, लेकिन भ्रांति एवं पशु प्रवृत्ति के कारण मनुष्य शरीर को ही आत्मा मान बैठता है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है, चेतो दर्पण माजनम। भ्रांतियों से पूर्ण हृदय को पूरी तरह स्वच्छ करना मात्र श्री कृष्ण संकीर्तन के माध्यम से संभव है। कृष्ण भावामृत आंदोलन के अग्रणी लोगों को इस सुअवसर पर गंभीरता से विचार करके पतित आत्माओं पर दयालु बनकर उन्हें भौतिक जीवन की भ्रांतियों से उबारना चाहिए। मनुष्य इस संसार में किसी भी तरह से सुखी नहीं हो सकता। जैसे भगवदगीता 8:16 में क्या कहा गया है, आ ब्रह्म भुवना लोक का पुनरावृत्तिरो अर्जुनम। इस भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से निम्नतम लोक तक सभी दुख के स्थान हैं, जहां बारंबार जन्म मृत्यु होते रहते हैं। अतएव चंद्रमा तक जाने की कौन कहे, यदि कोई सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक भी चला जाए तो भी इस भौतिक जगत में कहीं सुख नहीं है। यदि कोई सचमुच सुख चाहता है, चाहते हैं आप सब, तो उन्हें वैकुंठ लोक जाना चाहिए। भौतिक जगत जीवन संघर्ष के लिए जाना जाता है और योग्यतम की उत्तर जीविता सुप्रसिद्ध सिद्धांत है, जिसे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहते हैं। किंतु इस जगत के बेचारे लोग यह नहीं जानते कि उत्तर जीविता क्या है और सक्षम कौन है, कि सर्वाइवल क्या है और फिटेस्ट कौन है। उत्तर जीविता का अर्थ यह नहीं होता कि कोई मर जाए, इसका अर्थ यह है कि वह मरे नहीं अपितु ज्ञान के शाश्वत आनंद में जीवन का भोग करे। यह सर्वाइवल है, उत्तर जीविता है। कृष्ण भ्रामरित आंदोलन हर व्यक्ति को उत्तर जीविता के लिए सक्षम बनाने के निमित्त है। दरअसल यह जीवन संघर्ष को रोकने के निमित्त है। श्रीमद् भागवतम तथा भागवत गीता जीवन संघर्ष को रोकने के लिए निश्चित आदेश देते हैं और बताते हैं कि नित्य जीवन में किस प्रकार उत्तर जीवी बना जाए। अतः संकीर्तन आंदोलन एक महान अवसर है। मात्र भगवत गीता का श्रवण करने एवं हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करने से मनुष्य पूर्ण शुद्ध हो जाता है। इस तरह जीवन संघर्ष का अंत हो जाता है और मनुष्य भगवत धाम को वापस जाता है। ओम अज्ञानस्ति मिरंदस्य ज्ञानंजन शलाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। वांछा कल्पद्रुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। हरे कृष्णा। तो बहुत ही जबरदस्त और प्रभुपाद जी का प्रपट, जिसे प्रभुपाद जी ने ग्लोरीफाई किया है, किस कलयुग के लिए हरिनाम संकीर्तन की क्या महिमा है। केवल हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से भगवद्गीता का श्रवण करके हम अपने आप को पूर्ण रूप से शुद्ध कर सकते हैं और भगवत हम वापस जा सकते हैं। ये सुअवसर केवल कलयुग में उपलब्ध है, अगले केवल 9500 वर्षों तक ऑफर वैलिड, उसके बाद बहुत क्या होगा हम सब जानते हैं कलयुग में। तो प्रसंग ये चल रहा है कि इंद्र से दुर्वासा मुनि के प्रति अपराध हुआ, दुर्वासा मुनि ने उन्हें श्राप दिया और देवताओं ने अपने सारा ऐश्वर्य खो दिया, अस्त्रों से वे हार गए और बिल्कुल ऐश्वर्य विहीन होकर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं अपने रक्षा के लिए। और ब्रह्मा जी उनकी स्थिति को देख के सब समझ जाते हैं, वो ध्यान लगाते हैं और भगवान से संपर्क होता है ध्यान में उनका, और वो मुस्कुरा कर बताते हैं कि हम सभी जीव भगवान से उत्पन्न हुए हैं और भगवान इस सृष्टि को पालन करने के लिए भगवान के तीन गुण अवतार हैं, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण में। रजोगुण के द्वारा रचना होती है, तमोगुण के द्वारा संहार और सतोगुण के द्वारा पालन होता है। और अब ब्रह्मा जी उनको बता रहे हैं अयम च तस्य स्थिति पालन क्षण क्षण, अब यह क्षण आ गया है कि स्थिति पालन का क्षण है। सत्वम जुषाणस्य, जुषाणस्य की मतलब बिना किसी विलंब के तुरंत शीघ्र ही सत्वम, सत्व को हमें भवाय देहिना, जो देहधारी जीव है उनके अंदर सत्व गुण का भी उसको स्वीकार करना चाहिए। उससे क्या होगा, इसलिए ये सत्व गुण को स्वीकार करने से सत्व गुण में स्थिति का पालन होगा। कैसे, इसलिए क्या करना है, तस्मात रजामा शरणम जगत गुरु, इसलिए हमें जगत गुरु यानी भगवान की शरण में जाना चाहिए। स्वानम न स्वोद्धास्यति शम सुरप्रिय, वो सुरप्रिय है, भक्तों के देवताओं के प्रिय है, और वो हमें जो हमारे लिए आवश्यक ऐश्वर्य है, जो हमारे लिए आवश्यक सौभाग्य है वो हमें प्रदान करेंगे। तो ये ब्रह्मा जी की जो ये परामर्श है बहुत ही उपयुक्त परामर्श है। आप कल्पना कीजिए, देवता लोग सब हार गए हैं, उनका ऐश्वर्य उनसे छीन लिया गया है, उनकी स्थिति कैसी होगी, निश्चित रूप से वो शोक में होंगे। अगर किसी के जीवन में ऐसी घटना घटती है वो व्यक्ति शोक में रहता है, अगर इस पूरे समुदाय में ऐसा होगा तो समुदाय के आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, सब एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे, एक दूसरे की निंदा करेंगे, एक दूसरे पे कोई विश्वास नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति होगी, सब बिल्कुल विस्मित होंगे, कंफ्यूज होंगे। तो ये सारी स्थिति है तमोगुण और रजोगुण की, उनके अंदर रोष होगा, गुस्सा होगा, सब सोच होंगे इंद्र ने क्या कर दिया, क्यों दुर्वासा मुनि ने ऐसा किया, इस तरह के भाव चल रहे होंगे। और ब्रह्मा जी के पास सब गए और ब्रह्मा जी ने सब बोला अब समय है कि आप सत्वगुण को स्वीकार करो, ये रजोगुण तमोगुण सत्वगुण को स्वीकार करो, और सत्वगुण को स्वीकार करने के लिए क्या करना है, भगवान की शरण में जाओ। और भगवान सुर प्रिय है, भगवान आपको बहुत प्रिय है, क्योंकि देवताओं में और असुरों में युद्ध होते रहते हैं, अक्सर विजय किनकी होती है, देवताओं की। जब असुर हारते हैं वो भगवान की शरण में नहीं जानते, लेकिन जब देवताओं पे संकट आता है वो तुरंत भगवान की शरण में जाते हैं, इसलिए वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो आप उनकी शरण में जाइए, सत्व गुण को स्वीकार कीजिए, सत्वम विशुद्धम सत्वम विशुद्धम वासुदेव शब्दति, विशुद्ध सत्व में ही वसुदेव का जन्म होता है, यानी वसुदेव स्थित रहते हैं, वसुदेव। तो उसी से सत्व गुण से ही भगवान पालन करते हैं, इसलिए आप सत्व गुण को स्वीकार कीजिए। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि इस श्लोक में हम कलयुग की स्थिति को समझ सकते हैं जिससे हम इस समय गुजर रहे हैं। प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखते हैं कलयुग में सत्वगुण तो है नहीं, रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता है, और कितना चारों तरफ हम देखते हैं क्लेश ही क्लेश है। तो ऐसे कलयुग में हम कैसे भगवान की शरण ले सकते हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं कैसे, हरे नाम की शरण लग गए, हरे नाम एव केवलम। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि आज से 5000 वर्ष पूर्व कलयुग के प्रारंभ होने से पहले द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, उन्होंने क्या संदेश दिया हमें, भगवदगीता का, और भगवदगीता का जो सार लास्ट में क्या संदेश दिया, सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज, भगवान ये कहकर चले गए। उसके बाद 5000 वर्ष बीत गए, भगवान देखा किसी ने शरण ग्रहण नहीं की, तो भगवान प्रभुपाद लिख रहे हैं पट्टी लिख रहे हैं परपट में इंग्लिश में लिख रहे हैं कि कलयुग के जीवों के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुआ शरण ग्रहण करना। भगवान कितने प्रैक्टिकल है, कलयुग का मतलब है रिबेलियस, कि किसी भी अथॉरिटी को नहीं मानना, है ना, मनमानी करना और क्लेश ही क्लेश, तभी तो क्लेश है। अगर कलयुग में सब के सब आज्ञाकारी हो जाएंगे तो क्लेश कहां रहेंगे, तभी मतभेद है, क्लेश है। तो भगवान भी सोच रहे हैं कि व्यवहारिक नहीं है, कलयुग के लोग जो है ये सरेंडर नहीं करेंगे, है ना। अक्सर जब हम नकदी में नए नए हमें कोई चार्ज मिलता है, हम इंचार्ज बनते हैं, लीडर बनते हैं, तो हमारी यही कंप्लेंट आती है, भक्त लोग सरेंडर ही नहीं कर रहे। किसी से पूछो हम जाके लीडर के पास क्या चाहते हैं, हम क्लास में क्या संदेश दें, प्रभु जी सरेंडर करने को बोलो उनको, सरेंडर नहीं करते ना, कहना ही नहीं मानता, सरेंडर ही नहीं करते। अरे भगवान अपेक्षा नहीं कर रहे, हमें भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और भगवान बड़े प्रैक्टिकल है, कलयुग है इसमें सरेंडर नहीं करेंगे। लेकिन हमारे भगवान में क्या अंतर है, हम तो अपेक्षा करते रहते सरेंडर क्यों नहीं कर रहा है ना, क्यों नहीं कर रहा सरेंडर। लेकिन जो भगवान है वो बहुत कृपालु है, हमसे असली प्रेम करते हैं, बोले नहीं कर पाएंगे, क्या करना चाहिए ये मुझे जाके खुद सिखाना होगा। तो भगवान स्वयं एक उत्तम भक्त बन के आते हैं श्रीमती राधा रानी के भाव में, चैतन्य महाप्रभु बनकर, और वो बताते हैं कैसे जीना जीना, एक भक्त का जीवन कैसे होना चाहिए। और उन्होंने बताया कि शरण हम ग्रहण कर सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के जप और कीर्तन के माध्यम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग दोषों का सागर है, कले दोष निधि राजन। ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, इसमें हम मनन करें। प्रभुपाद बहुत ही कम ऐसे तात्पर्य होंगे प्रभुपाद जी के भागवतम और भगवदगीता में, जब प्रभुपाद जी ने एक ही तात्पर्य में दो बार एक ही श्लोक का वर्णन किया है ना। इसके दो बार ये श्लोक आता है, श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। कले दोष निधि राजन, कलयुग दोषों का सागर है। सागर मतलब अथा मतलब बॉटमलेस लिमिटलेस, गिन नहीं सकते। एक सागर से कितने ही लीटर हम पानी निकाल लें, सागर में कोई कमी नहीं आएगी। दोष निधि दोषों का सागर है, बात बात पे झगड़े ना। अभी कोई बता रहा था पीछे विकासपुरी में कोई खबर आई थी ना, डॉक्टर को मर्डर कर दिया ना, छोटी सी बात थी, उन्होंने बोला गाड़ी ठीक ढंग से चलाओ, दस ही लेकर वो लोग आ गए, अपना गैंगस्टर्स पूरे गैंग को लेकर आ गए, डॉक्टर की खूब पिटाई की और उससे शरीर त्याग दिया। छोटी छोटी बात पर झगड़े हो रहे हैं। कलयुग में एक परिवार का इकट्ठा रहना ही संभव नहीं है, इतने इतना क्लेश। दोषों का सागर, अस्ति एक महान गुण, केवल एक महान गुण है, कीर्तनादेव कृष्ण से। वो गुण ऐसा है कि ये दोषों के सागर को पूरा सुखा देता है। जैसे किसी भी चीज में गुण भी हो सकते हैं, दोष भी हो सकते हैं। गाड़ी का नया मॉडल आया, बड़े दोष है जी इसमें, ये क्या कर रहा है, पॉल्यूशन कर रहा है। नहीं, इसमें गुण बहुत अच्छा है, पिकअप बहुत अच्छी है ना। अब ये पिकअप अच्छी है, गुण अच्छा है, ये दोषों को खत्म नहीं कर रहा, बल्कि दोषों को बढ़ा रहा है ना। लेकिन कलयुग के अंदर जो गुण है वो एक ऐसा गुण है, एक गुण है, और दोष कितने हैं, सागर। एक गुण से पूरे के पूरे दोषों का सागर सूख जाएगा, उस दोषों के सागर को हम लांग जाएंगे, तो कितनी महानता है। इसको हमें रियलाइज करना चाहिए। प्रभुपाद बार 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 परपट में ये लिख रहे हैं, ये सुअवसर है, ये सुअवसर है, इसको खोना नहीं चाहिए। इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना असंभव है बद जीव का, तभी उसको नित्य बद बोला जाता है। केवल कीर्तन मात्र से बस, हालांकि दोषों का सागर है, उसकी चिंता नहीं करनी। कहां पे ध्यान देना है, कीर्तनादेव कृष्णस। महाभारत में कथा आती है कि एक बार रात्रि के समय एक ब्राह्मण युधिष्ठिर महाराज से मिलने आते हैं बहुत इमरजेंसी में। तो भीम उनको रोक लेते, समय नहीं है मिलने का। बोले बहुत आवश्यक है, मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं, मैं बहुत ही विस्मित हूं। भीम ने पूछा, शायद मैं प्रयास करता हूं, बोलो क्या क्या प्रश्न है। बोले ठीक है, आप बताने का प्रयास कीजिए। बोले मैंने फसल के बाहर फेंसिंग की, फेंसिंग क्या बोलते हैं, बाड़ लगाई, लेकिन बाढ़ ने ही फसल को खत्म कर दिया। मैंने देखा कि सुई के छेद से हाथी पूरा निकल गया, लेकिन उसकी पूंछ अटक गई। मैंने देखा कि एक बर्तन से आठ बर्तन भर गए पानी के, लेकिन वापस आठ बर्तनों से वो एक बर्तन पानी का नहीं भर पा रहा। अजीब सी बात है। मैंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और खुद ही उस बछड़े को खा गई। फिर मैंने एक और विस्मित वाली बात देखी कि एक साधु आया, उसे बहुत बड़ा पर्वत समान एक चट्टान थी, उस पर एक पतला सा धागा डाला, खींचा और पहाड़ चूर चूर हो गया। ये क्या है, भीम बड़ा विस्मित, बोले ये क्या है, मतलब तो युधिष्ठिर महाराज को उठाना पड़ेगा। युधिष्ठिर महाराज को उठाया, फिर से बातें बोले। युधिष्ठिर महाराज बड़े चिंतित हो गए, बोले उसका उत्तर दीजिए। युधिष्ठिर महाराज ने बोला कलयुग प्रारंभ होने वाला है ना। पहली बात क्या थी, जो बाढ़ थी उसने ही फसल को खा लिया, खत्म कर दिया, रक्षक भक्षक बन जाएंगे, पहला लक्षण। दूसरा क्या था, सुई से हाथी निकल गया लेकिन पूंछ अटक गई, बड़े बड़े घोटाले हो जाएंगे कोई पकड़ में नहीं आएगा, छोटी सी चोरी पिक पॉकेटिंग को पकड़ा जाएगा उसको सजा मिलेगी, बड़ी डकैती हो जाएगी, घोटाला आ जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा, छोटी छोटी चीजें पकड़ में आ जाएंगे। तीसरा क्या था, एक बर्तन से आठ बर्तन भर जाएंगे, परिवार का पिता पूरे परिवार का पालन करता है और बुढ़ापे में सब मिलकर भी उसको पाल नहीं सकते। और चौथा क्या था कि मां बच्चे को जन्म देगी और खुद ही गर्भपात करके उसकी हत्या कर देगी, जन्म नहीं देगी। तो चार ये बड़े बड़े दोष बताए युधिष्ठिर महाराज ने। लेकिन कीर्तनादेव कृष्णस्य, ये दोषों का पहाड़ है, इसमें कोई साधु आएगा पतला सा धागा डालेगा और उसको खींचेगा, पूरा पहाड़ दोषों का चूर चूर हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी वेरी स्पेशल युग, बहुत स्पेशल एज है ये। जो सौभाग्य वाली जीव होते हैं, भागवत के 11 स्कंद में बताया है, सौभाग्यशाली जीव इस कलयुग में जन्म लेते हैं। कितना आसान है, हालांकि दोषों का सागर है। तो ये संकीर्तन यज्ञ की महिमा है, इसलिए श्रील प्रभुपाद 1971 में लंदन में थे और कहते थे, इसलिए पूरे विश्व में जितने भी धार्मिक आंदोलन हैं, उनका कर्तव्य है कि वे सबको सिखाएं ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, इसी से ही पूरे विश्व में शांति आ सकती है, और कोई तरीका नहीं है। एक बार 1975 में प्रभुपाद मेलबर्न में गए, वहां डॉक्टर कूपरलैंड थे, उन्होंने प्रभुपाद से बोला, स्वामी जी अब आपकी संस्था बन गई है, आपके पास भक्त हैं, आपके पास मंदिर है, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? प्रभुपाद मुस्कुराए, बोले मैं अभी सफल नहीं हुआ। डॉक्टर कूपरलैंड ने बोला, ये सफल नहीं हुए और क्या चाहिए? प्रभुपाद बोला, मैं अपने आप को सफल तब मानूंगा जब संसार में प्रत्येक व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा। ये प्रभुपाद जी की इच्छा है। बिना इसके प्रभुपाद कह रहे हैं कि संसार में शांति नहीं आ सकती। एक बारी प्रभुपाद जी एलन गिल्सबर्ग के साथ थे, अपने प्रभुपाद लीलामृत पढ़ी होगी, तो एलन गिल्सबर्ग कौन थे? हिप्पियों के गुरु थे, सारे हिप्पीज उनको देखते थे, रोल मॉडल थे ना। और वो जो थे उनको हरे कृष्ण महामंत्र गाना बड़ा अच्छा लगता था, हालांकि वो भक्त नहीं बने, लेकिन उन्होंने प्रभुपाद के साथ कई कंसर्ट किए थे और हरे कृष्ण गाना उनको बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे ही कंसर्ट के बाद एलन गिल्सबर्ग और प्रभुपाद बैठे थे एक कमरे में, और प्रभुपाद ने बोला कि कलयुग के अंत में कोई वनस्पति पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, सारे पशु मांसाहारी हो जाएंगे, सारे आदमी नर पक्षी हो जाएंगे, हाहाकार मचेगी, कुछ भक्त जो बचे होंगे वो गुफाओं में चले जाएंगे। तो एलन गिल्सबर्ग ने बोला, तो स्वामी जी जो आपके भक्त होंगे वो गुफाओं में मिलेंगे? पर नहीं नहीं नहीं, नहीं जो हमारे भक्त होंगे वो तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, वो तो शुद्ध हो जाएंगे, वो तो सीधा भगवत धाम चले जाएंगे। इसके बाद प्रभुपाद बड़े गंभीर हो गए, प्रभुपाद आगे झुके, वो भी आगे झुका, प्रभुपाद ने उसकी आंखों में आंखें डाली और बोला प्रभुपाद ने, एट द एंड ऑफ कलयुग आई विल ईट यू एंड यू विल ईट मी, बेटर चैंट हरे कृष्णा एंड गो बैक टू गॉड। प्रभुपाद बोला कि कलयुग के अंत में मैं तुम्हें खाऊंगा, तुम मुझे खाओगे, इससे अच्छा यही है कि हरे कृष्ण नाम का कीर्तन करो और भगवत धाम वापिस चले जाओ। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान इस संकीर्तन यज्ञ की क्या महिमा है, लेकिन इसकी जो पहली किश्त है वो है जेतो दर्पण मार्च का, पहली, दिस इज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे चित्त का मार्जन करता है। हमारे चित्त में क्या गंदगी है, क्या गंदगी है हमारे चित्त में, इतने जैसे गंदगी इकट्ठी हुई पड़ी है, कई जन्मों के अनुभव संस्कार छपे पड़े हैं और तरह तरह के अनर्थ और उल्टी सीधी इच्छाएं ये सब का गंदगी है। और समझ लीजिए एक दर्पण है, भुरीजन प्रभु अपने पुस्तक में उदाहरण देते हैं, उस दर्पण के ऊपर 30 किलोमीटर की धूल जमी हो, एक दर्पण के ऊपर 30 किलोमीटर की धूल हो, तो उसमें से हम कोई व्यक्ति अपना चेहरा देखा क्या दिखाई देगा उसको, धूल ही धूल दिखाई देगी, और उसको देखकर अपना मेकअप कर रहा है और सोच रहा है वाह मैं फर्स्ट क्लास हूं। ये हमारी स्थिति है, यानी कि हम केवल धूल उन अनर्थों को देख रहे हैं, उस गंदगी को देखकर ही अपनी पहचान उससे कर रहे हैं और उसके हिसाब से कार्य कर रहे हैं। वी आर टोटली संस्कार ड्रिवन। संस्कार जैसे संस्कार है, संस्कार हमें ये अच्छा है ये बुरा उसके हिसाब से एक्ट करती है बस, है ना। अक्सर लोग बोलते हैं ना, जब से उन्हें देखा ऐसा लगा कि बस कई जन्मों का संग था हमारा, वो बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट। ये लव एट फर्स्ट साइट नहीं है, लस्ट आफ्टर मेनी साइट्स, है ना। वो काम वासनाओं के इंप्रेशन कई जन्मों के पड़े हुए, वो देखते ही ऐसी जो रूप है ऐसा कुछ फॉर्म है वो आकर्षित करने वाला, उसे आकर्षित हो गए और फिर हम दोबारा से उसके चक्कर में फंसेंगे और फिर से एक और इंप्रेशन, और ये चलता रहेगा और इससे हम कर्म बंधन में फंसे रहेंगे। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र करते ही साला का सदर्पण ये साफ, और हम अपने स्वरूप को जान पाएंगे, अपने और कृष्ण के साथ संबंध को जान पाएंगे। और प्रभुपाद कह रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल बॉडी में, आध्यात्मिक देह में हम भगवत धाम चले जाएंगे। सो पावरफुल चेतो दर्पण मार्जनो। दूसरा प्रभुपाद बता रहे हैं कि सबसे बड़ी जो अनर्थ है वो क्या है, देहात्म चेतना, कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। सारे संसार में झगड़े इसी कारण है, और वास्तव में देखा जाए भक्तों के बीच में भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है देहात्म चेतना के कारण है। ये बंगाली वैष्णव है, ये बिहारी वैष्णव है, ये पंजाबी वैष्णव है, ये कोई वैष्णव तो वैष्णव है, ये उस गुरु के शिष्य है, ये इस गुरु के शिष्य है, तरह तरह के मतभेद हमने अपने अंदर उत्पन्न कर लिए। एक बार आंदोलन के प्रारंभ में परम पूजनीय भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज प्रभुपाद के पास गए। भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज अफ्रीका से थे, ब्लैक अमेरिकन थे, तो उन्होंने बोला कि सारे के सारे जो भक्त है बाकी उनका वर्ण सफेद है, मैं ब्लैक हूं, तो मुझे लगता कि मेरे साथ भेदभाव किया जाता है। तो प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, प्रभुपाद ने बोला दोनों तरफ से देहात्म चेतना है, वो लोग तुम्हें काला समझ रहे हैं वो तो है देहात्म चेतना में, तुम्हें बुरा लग रहा है तुम भी देहात्म चेतना में, क्योंकि तुम अपनी पहचान कर रहे हो कि मैं ब्लैक अमेरिकन हूं, मैं ब्लैक हूं, इसलिए आपको बुरा लग रहा है ना, तो यानी कि दोनों के दोनों आप देहात्म चेतना में। तो भक्ति देव स्वामी महाराज को ये बात बहुत अच्छी लगी, हमेशा इस बात को याद करते हैं। तो इस देहात्म चेतना ही सभी झगड़ों का जड़ है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन संकीर्तन आंदोलन में भाग लेकर हम इस देहात्म चेतना से ऊपर उठ सकते हैं। हरिनाम संकीर्तन की, और ये हरिनाम संकीर्तन प्रभुपाद कह रहे हैं ये हमारे संघर्ष को समाप्त करता है। ये पूरा संसार संघर्ष कर रहा है रजोगुण और तमोगुण में, तमोगुण में लोग अंधकार में, उनको मालूम ही नहीं क्या ठीक है और क्या गलत है, और रजोगुण में इतनी सारी इच्छाएं, इतना ज्यादा कंपटीशन की इच्छा, और एक दूसरे से हम कुछ भी लोग धोखा देने को तैयार हैं। तो सतोगुण में जब तक ये पूरा समाज नहीं आएगा, प्रभुपाद जी 14वें अध्याय में लिख रहे हैं भगवद गीता के, तब तक संसार में सुख और समृद्धि नहीं आ सकती। प्रभुपाद तो यहां तक लिख रहे हैं कि हालांकि अधिकांशता लोग खुश नहीं रहेंगे, लेकिन एक छोटा प्रतिशत भी पूरे जनसंख्या का, कुछ प्रतिशत लोग भी कृष्ण भावना भावित हो जाएं और सतोगुण में स्थित हो जाएं, पूरे विश्व में शांति आ सकती है। कुछ प्रतिशत लोग भी अगर सतोगुण में स्थित हो जाएं, और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये कृष्ण कॉन्शियस आंदोलन जो है ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कराता है। आप सबने सुना होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन का थ्योरी है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी कि वही सर्वाइव करेगा जो कि फिट है। फिट क्या लिखा है यहां पे, हिंदी बड़ी अजीब सा ट्रांसलेशन किया था, सक्षम, जो सक्षम है वही जी पाएगा। प्रभुपाद कह रहे हैं सर्वाइव होने का मतलब मरना नहीं है, सर्वाइव होने का मतलब जीना है। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी का कोई संबंधी मरने वाला है, हम कहते हैं डॉक्टर साहब लाखों रुपए ले लो, इसकी जान बचा लो कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए। कृपा लिखते हैं कि मैं एक हॉस्पिटल में था, एक सेठ जी थे, रो रो के चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे मेरी कुछ योजनाएं हैं, कुछ दिन मुझे और जीने दो। बोले वहां आप डॉक्टरों को लाखों रुपए देने को तैयार हो, उसकी शरण में जाने को तैयार हो, या हम कह रहे हैं हमारे पास आओ हम तुम्हें अमर बना देंगे, कोई नहीं आता है ना। इस संसार में लोग कहते हैं जान है जहान है, शास्त्र में बता रहे ऐसा जहान है जहां जान ही जान है। और लोग समझते हैं ये पागल वाली बात कर रहे हो, अरे वहां कोई मृत्यु नहीं है, जान ही जान है वहां पे, लाइफ ही लाइफ है, लेकिन हम मानते नहीं है। वहां जाना इतना आसान है और यहां पर हम अपने छोड़े से इस शरीर में जो कष्ट में इसको आगे बढ़ाने के लिए कितना कष्ट झेलते हैं। तो हरिनाम संकीर्तन से ये सारा का सारा संघर्षमय जीवन समाप्त हो जाएगा, ये इसकी महिमा है। और पूरी की पूरी समाज को ये, जितना हम हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करेंगे, इस समाज रजोगुण और तमोगुण से उठकर सतोगुण में स्थित हो सकता है। प्रभुपाद यहां लिख रहे हैं कि कृष्णा भावना आंदोलन के अग्रणी लोगों को इस सुअवसर पर गंभीरता से विचार करके पतित आत्माओं पर दयालु बनकर उन्हें भौतिक जीवन की भ्रांतियों से उबारना चाहिए। जो लोग भी इस कृष्णा कॉन्शियस आंदोलन में लीडरशिप का रोल प्ले कर रहे हैं उनसे प्रभुपाद निवेदन कर रहे हैं कि उनको बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि बहुत सुंदर अवसर है कि लोगों तक ये हरे कृष्ण आंदोलन को पहुंचाएं, हरे कृष्ण महामंत्र पहुंचाएं, ताकि वो गलत भ्रांतियों से अपने आप को उभार सके। ये कृष्णा कॉन्शियस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य प्रभुपाद जी कहते हैं टू प्यूरिफाई योर सेल्फ एंड हेल्प अदर्स इन प्यूरिफाइंग, अपने आप को शुद्ध करें और दूसरों को शुद्ध होने में सहायता दें। और हम देखते हैं इस हरे कृष्ण आंदोलन में कुछ भी कर रहे हैं, कितना शुभ कार्य है, प्रसाद वितरण करें, हरिनाम वितरण करें, पुस्तक वितरण करें। कितने ऐसे केसेस हमें सुनने को मिलते हैं कि पुस्तक वितरण किया, किसी घर में पुस्तक गई, केवल पुस्तक पढ़ने मात्र से उसने मांसाहार छोड़ दिया, मदिरापान छोड़ दिया और हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू कर दिया। ऐसे कितने केसेस आते हैं। तो जितना ज्यादा हम प्रचार करेंगे समाज सत्वगुण में स्थित होता जाएगा और गलत भ्रांतियों से ऊपर उठेगा। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अगर हम चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का अनुगमन करें। महाप्रभु की क्या आज्ञा थी, सबसे प्रमुख आज्ञा क्या बोल रहे हैं, सब श्रेष्ठ आश्रम को पहला श्लोक बोल रहा है, कोई दूसरा बोल रहा है, कोई तीसरा बोल रहा है, कौन सा क्या क्या आज्ञा है हमारे लिए, जा रहे को तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा पूरी हो तारे देश, कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा कीर्तन करो। तो प्रभुपाद जी ने एक चिट्ठी लिखी अपने एक शिष्या को 29 अगस्त 1973, सुसैन उनका नाम था, बर्कले में, वो बहुत परेशान थी। तो प्रभुपाद बोला मेरे पास एक ही सोल्यूशन है, कीर्तनीय सदा हरि। और प्रभुपाद बोल रहे संकीर्तन का मतलब है 24 घंटे कीर्तन करना, इसके अलावा और कोई कार्य मत नहीं करना। तो कैसे समझे इस बात को, केवल 24 घंटे कीर्तन करना और कोई कार्य नहीं करना। और प्रभुपाद बार बार कहने इसके अलावा मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, कैसे समझेंगे इस बात को, प्रैक्टिकल लगता है। और भाई प्रभुपाद कह रहे इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, 24 घंटे कीर्तन करो, कैसे कर सकते हैं 24 घंटे कीर्तन है? हाँ, हमारा हर कार्य संकीर्तन है। अगर हम सही चेतना में कार्य करें, हमें देखना चाहिए कि हमारा हर कार्य किस प्रकार से हरि नाम के प्रचार को बढ़ा रहा है। ईच एंड एवरीथिंग, आप ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस में आप कोई सेवा काम कर रहे हैं, लेबर से डीलिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल से डीलिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हरि नाम के प्रचार के लिए। जहां मौका मिले डायरेक्टली हरि नाम का प्रचार करो, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हर स्थिति में हमने कीर्तनीय सदा हरि। प्रभुपाद जब जुहू में थे, कंस्ट्रक्शन चल रही थी, प्रभुपाद के शिष्य ने बोला अभी काम बंद करवा दें, आपसे बातचीत कर रहे हैं। प्रभुपाद बोला नहीं, ये शोर नहीं है, ये संकीर्तन है। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज ने मंदिर के प्रांगण में प्रिंटिंग प्रेस लगाई, वो जो आवाज आती थी, श्री भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं ये कीर्तन चल रहा है राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो ये समझना है हमने, ये एक कनिष्ठ अधिकारी की मेंटेलिटी होती है कि वो अपनी सेवा को अलग देखता है और अपने जीवन को अलग देखता है। लेकिन जो पूरा ब्रॉड विजन ये है कि भक्त का पूरा जीवन संकीर्तन है, पूरा का पूरा जीवन, फिर भी हालांकि हर क्रिया भक्त की संकीर्तन होगी, अगर वो सुबह सुबह हिज होलीनेस भक्ति भक्त भागवत महाराज स्वामी महाराज आए थे कि हमारी हर क्रिया संकीर्तन तब होगी क्योंकि हर क्रिया हमारे हरे कृष्ण महामंत्र का जप का एक एक्सटेंशन है। अगर हम सुबह ध्यान पूर्वक जप करके जाते हैं तो हम जो भी कार्य करेंगे कृष्ण भाना भावित होकर करेंगे और वो जो कार्य है वो हमारा संकीर्तन बनेगा। फिर भी विश्वनाथ चक्री ठाकुर पाद कहते हैं हालांकि हर क्रिया संकीर्तन है लेकिन फिर भी हरिनाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। जब हमें मौका मिले चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश आमार आज्ञा गुरु होई तारे ही देश। तो हम किस प्रकार से, आप में से कितने भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु के इस आज्ञा का पालन करना चाहेंगे, आमार आज्ञा गुरु होई तारे ही देश, कितने भक्त लोग जिम्मेवारी उठाने को तैयार है? हरी बोल। आप सबको शुभकामनाएं। तो कैसे कमर कस के तैयारी करनी है? वास्तव में प्रभुपाद जी कह रहे हैं केवल 9500 वर्ष बचे हैं और केवल 9500 वर्षों के लिए गोलोक वृंदावन के द्वार खुलते हैं, उसके बाद वो द्वार बंद हो जाएंगे। उसके बाद अगर किसी का उद्धार होगा भी ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ लोगों तक जाएगा, गोलोक वृंदावन तक जाना बहुत कठिन है। केवल इसी कलयुग में 9-10,000 वर्षों के लिए ये द्वार खुलते हैं बस, उसके बाद खुलेंगे दोबारा से 864 करोड़ साल के बाद। इतना सुंदर अवसर है। तो बस हमने क्या करना है, अपने जीवन को इस ढंग से सुव्यवस्थित करना है कि जीवन के हर क्षण हमें जान पाए कि मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है। हम इस कलयुग के क्लेश में अपने जीवन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है उसको भूल जाते हैं। वो बात हम याद रखेंगे तो हमेशा हम फोकस रह सकते हैं। तो कैसे हम लोग अगर इस जिम्मेवारी को निभाते हैं तो कैसे इस कृष्णा भारामृत के आंदोलन को प्रचार करने के लिए कैसे हम पूरे समाज को और अपने आप को सतोगुण में ला सकते हैं इस हरे नाम संकीर्तन के माध्यम से। तो हमने कुछ बातें नोट की हैं, आपके सामने समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले है कि हम अपने अंदर व्यक्तिगत रूप से सतोगुण को विकसित करें। तो व्यक्तिगत रूप से हम सतोगुण को वैसे ही विकसित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने अंतिम लीला में कि जब वो शरीर छोड़ने लगे थे अंतिम समय में भी प्रभुपाद भागवतम के 10वें स्कंद के 13वें अध्याय का ट्रांसलेशन कर रहे थे, ब्रह्म विमोहन लीला, और उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्या सतोगुण की इंपॉर्टेंस है। आप देख सकते हैं अरे स्मॉल वीडियो 1.5 मिनट्स, इसमें हम साक्षात प्रभुपाद जी से सुनते हैं। हरी बोल श्री प्रभुपाद की। क्या क्या बताया प्रभुपाद जी ने, छोटे से एक डेढ़ मिनट में बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया। आवाज सुनाई दे रही थी पीछे तक? ओहो, पढ़ा जा रहा था? नहीं पढ़ा जा रहा था। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अपने चरित्र को विकसित करना चाहिए, उसके लिए हमें श्रीमद् भागवतम प्रतिदिन उसकी पढ़ना और उसकी चर्चा करनी चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं नष्ट प्रायश्चो भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया, इससे रजगुण और तमोगुण का प्रभाव कम हो जाता है और हम सत्वगुण में स्थित होते हैं। अगर हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे चर्चा करेंगे तो रजगुण और तमोगुण हमें हानि नहीं पहुंचा सकते। रजगुण और तमोगुण हमें कैसे हानि पहुंचाते हैं? रजोगुण से लालच बढ़ता है, क्रोध इच्छाएं बढ़ती हैं, तमोगुण में क्रोध है, मोह है, शोक है, पागलपन है। अधिकांशतः लोग कलयुग में इसमें स्थित हैं। लेकिन अगर प्रतिदिन दिन हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे चर्चा करेंगे तो हम सत्वगुण में स्थित होंगे, नंबर एक। दूसरा, प्रभुपाद ने बोला कि कैसे हम लोगों को सत्वगुण तक विकसित कर सकते हैं। लास्ट में क्या था? अपने आप को बड़ा नीट एंड क्लीन रखें, और दूसरा सुबह जल्दी उठें मंगल आरती के लिए, इससे हम अपने आप को सत्वगुण में ला सकते हैं। तो ये सब हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या? पहले हम अपने आसपास सफाई रखें और दूसरा हम सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। ओके, प्रयास करें। दूसरा, प्रभुपाद जी ने बोला कि भागवतम की चर्चा नष्ट प्राय शोभद्रेश, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस ग्रेस यशोमती नंदन प्रभु जो कि अहमदाबाद में प्रेसिडेंट हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो बता रहे हैं कि एक बार प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी थे उपेंद्र, प्रभुपाद ने उनसे पूछा डू यू डेली स्टडी माई बुक्स, क्या आप प्रतिदिन मेरे पुस्तकों का अध्ययन करते हैं? उपेंद्र ने उत्तर दिया यस प्रभुपाद आई डेली रीड योर बुक्स। प्रभुपाद ने जोर से हाथ मारा डेस्क पे, आई आस्क यू डिड यू डेली स्टडी माई बुक्स, क्या आप मेरे पुस्तकों का अध्ययन करते हो? डोंट रीड माई बुक्स, स्टडी माई बुक्स, मेरे पुस्तकों खाली पढ़ो मत, उनका अध्ययन करो। ये प्रभुपाद चाहते हैं कि हम उनके, प्रभुपाद कहते हैं रिमेंबर ईच एंड एवरी वर्ड, एक एक शब्द को याद करो। अगर तुमने कोई श्लोक सीखा है तो एक एक शब्द का मतलब तुम्हें मालूम होना चाहिए। ये प्रभुपाद हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम प्रभुपाद उनके तात्पर्यों को हम बहुत गंभीरता से और अलग अलग दृष्टिकोण से उसका अध्ययन करें। इससे अगर हम भक्तिविधान प्रवर्त का अध्ययन करेंगे तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं हम रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से बच सकते हैं। ये विश्वास की बात है। प्रभुपाद लिख रहे हैं सिंपली केवल भगवत गीता के श्रवण करने मात्र से और हरे कृष्ण महामंत्र के जप से हम भगवत धाम वापिस जा सकते हैं। तो हम साधकों का इस बात पर पूरा विश्वास होना चाहिए, और प्रभुपाद जी का भी इस बात पर पूरा विश्वास था। जब प्रभुपाद जलदूत में थे और बॉस्टन में उतरे और देखा कि ये सब क्या है, यहाँ अमेरिका में कैसा वातावरण है, तो प्रभुपाद ने जो मार्की ने भागवत कविता लिखी उसमें इन्हीं श्लोकों का उच्चारण किया, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय से, नष्ट प्रायशु भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। प्रभुपाद बोले उनको प्रभुपाद के पास केवल एक ही चीज थी, हरिनाम और भागवतम, बस इन्हीं दो पर पूरा विश्वास था कि भागवतम के संदेश से और हरिनाम से इन सब में परिवर्तन आएगा, और प्रभुपाद परिवर्तन लेकर आए भी। तो ये दो बातें थी। इसके अलावा संकीर्तन का अर्थ ये भी है कि हम कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के दिए हुए रास्ते पर अनुगमन करने का अर्थ है किस प्रकार से प्रेम पूर्वक चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों से आदान प्रदान करते थे। निमाई पंडित इतने उदंड थे, उदंड शिरोमणि उनको कहा जाता है, लेकिन जब उन्होंने दीक्षा लेकर आए तो कितने विनम्र हो गए। सब ब्राह्मणों का जब धोती धोते थे, उनको सुखाते थे, वो अगर कोई फूल इत्यादि ले आ रहे हैं अर्पण करने के लिए उसको उठाते थे, सब ब्राह्मण करते थे निमाई ऐसा मत करो, तो बोलते थे भगवान भक्तों की सेवा करने से प्रसन्न होते हैं, क्या आप नहीं चाहते मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूं, उनसे आशीर्वाद मांगते थे। यानी कि जब निमाई पंडित ने संकीर्तन आंदोलन शुरू किया तो पूर्ण रूप से वो विनम्र हो गए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कीर्तन ये सदा हरी होने के लिए हमें मदद करे मिलेगी अगर हम त्रिनाद अपि सुनिचे तरुर अपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन का हमेशा प्रयास करते रहें। तो हम कितने सदाहरी बन सकते हैं, तो कैसे एक दूसरे से हमने डील करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे एक दूसरे की सेवा की हमने आदर देना है। एक बार प्रभुपाद जब गए मंदिर में न्यूयॉर्क में, तो भक्तों के बीच में बहुत टेंशन चल रहा था, बुक डिस्ट्रीब्यूटर समझ रहे थे कि हम ही सबसे महान है, कि प्रभुपाद बार बार कहते हैं दिस इज द टॉप मोस्ट सर्विस, इफ यू डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स गो बैक टू गॉडहेड, यू विल गो डायरेक्ट बैक। और ये बेचारे टेम्पल मैनेजर्स थे, उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलता था, कोई तारीफ नहीं मिलती थी, वो मंदिर में पीछे सफाइयां करते थे और मैनेजमेंट करते रहते थे, और बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स आते थे, वो सोचते थे हम ही फेवरेट हैं प्रभुपाद के, तो बड़ा टेंशन हो गया था भक्तों में। प्रभुपाद आए और संडे का लेक्चर हुआ, तो एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर ने हाथ खड़ा किया, प्रभुपाद हाउ कैन वी प्लीज यू, बड़ा लोडेड क्वेश्चन था। सब बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स बोले थे यस, तैयार थे बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग माई बुक्स, चिल्ला पड़ेंगे सर, और बाकी लोग भी सब देख रहे प्रभुपाद क्या उत्तर देंगे, यही तो टेंशन का कारण था, प्रभुपाद कैसे खुश होंगे। प्रभुपाद कहते हैं इफ यू स्टार्ट लविंग कृष्णा, कृष्ण से प्रेम करना शुरू करोगे सो आई विल बी प्लीज्ड, यानी कि ये सेवा वो सेवा नहीं, सब सेवाएं महत्वपूर्ण हैं। भागवतम तीसरे स्कंद में 15वें अध्याय में वैकुंठ जगत का वर्णन है, वहां पर बताते हैं जब भ्रमर के राजा है ना, वो जब गुनगुन करना शुरू करते हैं तो अच्छे अच्छे पक्षी, कोयल, मोर, ऐसे नहीं, ये नहीं थे कोयल थे, मोर थे, तोता था, चकवक थे, उन सब ने अपना गायन बंद कर दिया कि ये जो भ्रमर है ये भगवान का गुणगान कर रहा है, इसको गुणगान करने दो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये वैकुंठ जगत का ये वहां पे लक्षण है, कोई अगर गुणगान कर रहा है दूसरा उसको बढ़ावा देता है, हालांकि पक्षी उनसे बेहतर गा सकते हैं। वैकुंठ जगत में पुरुष और स्त्रियां अति सुंदर हैं, यहां के सुंदर पुरुष स्त्रियों की तुलना में नहीं की सकते, लेकिन सबके पास सुंदर सुंदर विमान भी हैं, सारे ऐश्वर्य हैं, लेकिन इन ऐश्वर्यों के प्रति पुरुष और स्त्री का आपस में कोई आकर्षण नहीं है, दोनों के दोनों हमेशा भगवान का गुणगान करते रहते हैं। तो ये इसका अनुगमन हमने करने का प्रयास करना है, तो कि जितना ज्यादा कले दोष निधि राजन, हम एक दूसरे के दोषों को तो देख सकते हैं, लेकिन हमें यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि भक्तों में गुण क्या है, किस प्रकार से प्रभुपाद के मिशन की सेवा कर रहे हैं। प्रभुपाद के अंतिम समय में एक चिट्ठी आई उनको, और उसमें एक युवा भक्त ने उनको लिखा, प्रभुपाद हम भागवतम में पढ़ते हैं ययाति महाराज के एक पुत्र ने अपना यौवन देखकर उनसे अपना बुढ़ापा ले लिया था, आप बूढ़े हैं मैं युवा हूं, मैं आपका बुढ़ापा स्वीकार कर लेता हूं, प्रभुपाद आप मेरा युवा यौवन स्वीकार कीजिए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। कितने अच्छे भाव हैं, कितना इमोशनल भाव है। प्रभुपाद ने बोला ठीक है आप मुझसे प्रेम करते हो, बट योर लव फॉर मी इज बी शोन दैट हाउ डू यू कॉपरेट आफ्टर आई लीव। ये इमोशनल बातें अच्छी बात है, आपने एक्सप्रेस कर दिया अच्छा है, लेकिन असली बात यह है मेरे जाने के बाद आपके प्रेम की परीक्षा होगी कि आप कैसे कॉपरेट करते हैं। बहुत बड़ा शब्द है कॉपरेशन, कहना आसान है, और यही आपस में संकीर्तन है, और जो कॉपरेट करेगा वही प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएगा। प्रभुपाद जी एक चिट्ठी में लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी के समय में ही भक्तों में, क्योंकि जब भक्ति में कोई शुरुआत करेगा तो रजोगुण तमोगुण तो क्लैश होंगे, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वी शुड नॉट क्रिटिसाइज ईच अदर एज वैष्णव्स बिकॉज देयर इज फॉल्ट इन एवरीवन, हमें एक दूसरे वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि दोष तो सब में है, एंड वी मे बी आवर सेल्फ सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म, हमारे अंदर खुद के अंदर इतने दोष होंगे जो कि निंदनीय है। बेस्ट थिंग इज टू बी अबव सस्पिशन आवर सेल्फ्स, सबसे उत्तम बात यह है कि अपने आप को संशय से ऊपर रखो, आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कोई आप पे संशय ना कर सके। देन इफ वी सी डिस्क्रिपेंसीज, उसके बाद अगर हमें कहीं गड़बड़ नजर आ रही है, मेक सजेशंस, आप सुझाव दीजिए, द अदर्स विल ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट एंड टेक एक्शन टू रेक्टिफाई द मैटर्स। आप अपने आप को संशय से ऊपर कर लेंगे और फिर कहीं गड़बड़ दिखाई देती है तो कुछ सुझाव देंगे, तब लोग आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और आपको आदर देंगे और जो गड़बड़ हो रही है उसको वो ठीक करेंगे। दैट इज कोऑपरेशन, ये कोऑपरेशन है, एंड वी मस्ट एग्जिस्ट ऑन सच कोऑपरेशन, अदरवाइज द होल थिंग इज डूम्ड, और हमें यही कोऑपरेशन करना चाहिए अन्यथा सबका सब डूब जाएगा। प्रभुपाद जी ने इतनी मेहनत से आंदोलन खड़ा किया है, सो ट्राई टू ऑर्गेनाइज थिंग्स एंड प्रीच टूगेदर इन दिस स्पिरिट एंड दैट विल प्लीज मी वेरी वेरी मच। इस ढंग से हमें करना चाहिए, अपनी छोटी छोटी मानसिकता से ऊपर उठकर हमें ये फोकस रखना चाहिए, संकीर्तन मिलके हम कैसे प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी, कोई दोहरा सकता है क्या क्या बातें हमने बताई इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, अगर हम एक यहाँ पे लीडर का रोल प्ले करते हैं तो? पहला, व्यक्तिगत रूप से सतगुण में आए। दूसरा, हाँ जी नहीं, उससे दूसरा पॉइंट क्या था? हाथ खड़ा करके कोई बताएंगे जोर से? यस माता जी, हाँ, श्रीमद भागवतम प्रतिदिन नष्ट प्रायशु अभद्रेशु नित्यम। भागवत क्या करें? पढ़े नहीं, अध्ययन। प्रभुपाद ने जोर से बोला था पढ़ना नहीं है, अध्ययन करके चर्चा करें, उससे हम सत्वगुण में आएंगे। और तीसरा, नीट एंड क्लीन रखें। चौथा, सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। जो भक्त मंगल आरती आ सकते हैं मंदिर में मंगल आरती है, जो घर में उठ के करें मंगल आरती, कम से कम कोशिश करें सप्ताह में एक दिन हम मंदिर में आके मंगल आरती करें। और पांचवा, एक दूसरे का हम आदर करें, एक दूसरे से हम कोऑपरेट करें। तो ये हमारी जिम्मेवारी है, ऐसा करेंगे हम भी सत्वगुण में आएंगे और पूरे समाज को हम सत्वगुण में आसर ला सकते हैं। और उसके बाद ये सब प्रचार करना ही, ऐसा नहीं, ये सब किस लिए है? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो ऐसा करेंगे तो अपना भी उद्धार और दूसरों का भी उद्धार, ऐसा नहीं करेंगे तो प्रभुपाद लिख रहे एवरीथिंग विल बी डूम्ड। तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव बहुत हानिकारक है, तो इससे बचने का एकमात्र यही उपाय है। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, प्रभुपाद कह रही है सुअवसर है, इस सुअवसर को हम पूरा लाभ उठाएं और पूरे समाज में हम सौभाग्य का वितरण करें। हरे कृष्ण। एक या दो प्रश्न ले सकते हैं?
आरक्ष मुझे थैंक यू बहुत, बहुत एनकरेजिंग लेक्चर था और पॉइंट्स बहुत क्लैरिटी के साथ। एक सवाल जो आप लास्ट में प्रभुपाद के ग्रंथों को भागवत सेवा के अंदर एक आपने बोला कि अध्ययन करें और साथ में भी बोला कि चर्चा करें, सो इसमें क्या फर्क है? क्योंकि ये देखा जाता है वैसे तो यही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है कि पढ़ ले, तो जैसे प्रभुपाद के पिछले आपका एक लेक्चर में आपने उद्धृत भी किया था चैतन्य चिंतामृत से, इफ यू डू नॉट रीड माय बुक्स देन यू विल ईट स्लीप एंड फॉल डाउन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ ये। सो और एक हो गया कि चर्चा करते, ये चर्चा कैसे हो सकती है? क्योंकि पढ़ना तो आदमी किताब उठा सकता है पढ़ सकता है, ये कैसे हो चर्चा कैसे?
अच्छा प्रश्न, चर्चा कैसे करें? तो इसके लिए जैसे मैंने बोला अपने लाइफ को हमें ऐसे सुव्यवस्थित करना पड़ेगा कि जाने वाले महत्वपूर्ण क्या है। अभी भक्त लोग मिलते हैं आपस में तो क्या चर्चा करते हैं, क्या चल रहा है मंदिर में, क्या हो रहा है, इसका क्या हुआ, उस भक्त का क्या हुआ, डू सो मेनी थिंग्स। अगर हम अच्छे ढंग से अध्ययन करके आएंगे तो हम प्रतीक्षा कर रहे होंगे कब आऊं मंदिर में, कब भक्तों से मिलूं, जो मेरे मन में होगा वही बात निकलेगी, जो इनसाइड वो आउटसाइड आएगा ही। तो जब हम अध्ययन करेंगे तो वो पॉइंट इतना अच्छा लगेगा, हम व्हाट्सअप करेंगे उसको, है ना? अब व्हाट्सअप क्या करते हैं, है ना, कि उसने लहसुन मिल गया, उसने प्याज मिल गया, ये नया चॉकलेट आया है, ये वो कर लो ये कलब, हम ये व्हाट्सअप करते हैं। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है भक्तों के समाज में, लेकिन अगर नया पॉइंट हमें मिला भागवतम का, तुरंत व्हाट्सअप करेंगे, डिस्कस करेंगे आपस में, मिलेंगे तो बातचीत करेंगे। प्रभुपाद कहते हैं स्पिरिचुअल मैटर्स को जब आपस में डिस्कस करेंगे तब वैराग्य उत्पन्न होता है, 15वें अध्याय में प्रभुपाद लिख रहे हैं वैराग्य तब उत्पन्न, बाय डिस्कसिंग द स्पिरिचुअल साइंस अमंगस्ट डिवोटीज। डिस्कशन कर लीजिए, जो आप डिस्कस करते हैं वो याद रहती है। एकादशीज आर मेंट फॉर दिस, एकादशी के दिन भक्त लोग इकट्ठे हो सकते हैं एक जगह, कहीं भक्त लोग जागरण भी कर सकते हैं चाहें तो, पूरा डिस्कस करें। अगर हमारे पास मैटर होगा तो हम तो कहेंगे करेंगे, अब अंदर कुछ है ही नहीं तो भक्तों से मिलते तो क्या करेंगे, सोशलाइज करेंगे और भाई कैसे हो क्या खत्म दैट। और फिर ये फोरम्स हैं, भक्ति शास्त्री कोर्सेज हैं, भक्तों के संग में आगे प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए इच्छा रही, उनकी इच्छा से हम आगे और कोर्सेज भी शुरू कर सकते हैं रेगुलर लेवल पे, जैसे भक्त लोग आगे आए इकट्ठे आए इकट्ठे मिलकर चर्चा करें। यस माता, हाँ जी बहुत सारे रिलीजन का मतलब है बहुत से तरीके, उन सब उल्टे सीधे तरीकों को छोड़कर केवल मेरी शरण में हो, केवल मेरी शरण में हो। बहुत से तरीके थे जीवन में आनंद पाने के, तभी निराकारवादी लोग भी थे, हर तरह के भ्रांतियां थी अलग अलग।
हेलो प्रभु जी, आपने बोला कि सतोगुण को डेवलप करना और उसमें स्टेबल रहना, ऐसा ऑब्जर्व होता है कि वो एक साइक्लिकल सा फेज आता है कि आ जाता है और फिर सब कुछ ठीक होते हुए अचानक से ही कुछ रजोगुण, मतलब कुछ एस्पिरेशंस, डिजायर्स, और फिर एक साइकिल से चल जाती है। तो कोई ऐसा है उपाय कि हम उसी में रुक जाएं और उसमें ना जाएं, कुछ डेलिबरेट एफर्ट करके?
वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये व्यवहारिक प्रश्न है, और भगवान गीता में बता ही रहे हैं कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण आपस में हमेशा संघर्ष करते रहते हैं और आपस में कॉम्पीट करते रहते हैं। रजोगुण सत्वगुण को हराने का प्रयास करेगा, तमोगुण रजोगुण को, या आपस में कॉम्पिटिशन चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम सत्वगुण में स्थित हो गया, रजोगुण तमोगुण मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऐसा होगा ही होगा, अटैक होगा उनका। लेकिन सभी अटैक से बचने का एकमात्र तरीका है कीर्तनीय सदाहारी, हमेशा कीर्तन करें हर परिस्थिति में। जब अटैक बढ़ जाए तो कीर्तन को और बढ़ा दें, एकमात्र उपाय यही है। हमारा हर कार्य हरि नाम की सेवा के लिए, हर कार्य, बच्चों को देखना, पालना, पोषण करना, बिजनेस देखना, समाज में आदान प्रदान करना, हर कार्य ऐसा होना चाहिए कि इससे हरि नाम के प्रचार में हम कुछ सहयोग दे रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, चैतन्य महाप्रभु की, हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, विदाई गौर प्रेमानंदे।